नमो महाप्रभुनाय कृष्णाय कृपा श्रीमद् भागवत महापुराण ने बताया था रोहिणी जी की बातों को सुनकर और तत्पश्चात रुक्मिणी और सत्यभामा की बातों को सुनकर मूलमती कृष्ण की माता मां ये ठीक पंखी की आवाज दे रहा है पंखी की आवाज से वृद्धा बात मौके जिसने पहले रोहिणी मैया के द्वारा अवज्ञा की गई थी रोहिणी मैया ने पहले उसकी बातों को सुन करके भी नहीं सुना था और ये पद्मावती इस समय कुछ परिहास व्यंजक भंगी से हंसी मजाक की भंगी से कृष्ण का चित्त स्वस्थ करने के लिए वो बोली और उसका ये भी तात्पर्य था कि महाराज उग्रसेन का राज्य भी न दे दें कृष्ण उन लोगों ब्रजवासियों इसलिए वो बोलने लगी सिर कपाती हुई आखिर तो कृष्ण की माता मही है इसलिए कृष्ण के प्रति ममता उसकी है किंतु किस रूप में उसकी ममता स्वार्थमयी है चाहे ब्रजवासी लोग सब मर जाएं गायें मर जाएं वहां के आदमी मर जाएं किंतु कृष्ण मथुरा में ही रहे और यहाँ रहने पर भी ब्रजवासियों को कृष्ण कुछ ऐसा न दे दें कि उनके पति उग्रसेन का राज्य भी चलाए इन्हें सब विषयों पर विचार करते थोड़ी ये बहुत कहने लगी क्या कहने लगी स्वयं कम कहते कृष्ण कथम मंत्र मंत्रितम
यद एकाम अभिभव नंद गोपेश्वर मंदिर।
कहने लगी जब देखो तुम लोग कृष्ण के लिए अनुताप क्यों करते हो, ब्रज में रहे ठीक है रहे, उसके लिए कृष्ण उनके देने के लिए क्यों चिंतित रहे और तुम लोग क्यों चिंतित हो गए। देखो मेरी बात सुनो, मैं जो सलाह दे रही हूं उसे सुनो। देखो दोनों ये भाई लोग 11 वर्ष तक नंद ब्रज में थे, नंद बाबा के घर में थे और जो कुछ उन्होंने खाया पिया है उसमें से कुछ तो बनता है कि नंद बाबा की गैया चराया जो बड़े कष्ट से, उसका भी तो महीना कुछ लगना चाहिए। खैर वो दें और न दें कोई बात, इसकी पाई पाई गर्भ मुनि से इसका अकाउंट किया जाए, हिसाब पिसाब किया जाए और यदि कुछ उनका शेष बचता है इसका नंद बाबा का ब्रजवासियों का जो उन्होंने खिलाया पिलाया है तो उसका दोगुन दे दिया जाए, किंतु सारा राज्य देने की कोई जरूरत नहीं, दोगुन दिया जाए। तात्पर्य क्या, कहते हैं गोपराज को, गोपराज माने नंद बाबा गोप हैं, अरे उनके घर में क्या है, केवल तो गायों का छाछ है दूध है बस यही तो, इसका दाम कितना होगा और केवल 11 वर्ष तक और वो भी हिसाब काट करके। कौन सा हिसाब, हाँ जब तक से गैया चराया उसका भी तो कोई महीना या वेतन है, तो इसको निकाल करके क्या बचेगा, कौड़ी कौड़ी हम विचार कराएंगे गर्व से, वो महा ज्योतिषी है, एक पैसे की भूल नहीं होगी, हमारे पति का एक पैसा भी नहीं जाएगा पीछे से ये गांव, वो हिसाब करके सब निकाल देंगे। और गुरु का कितना खर्च, गाय का तो दूध दही बह रही है वहां नंद गोकुल में, उसका कोई मूल्य नहीं, इसलिए मैं स्वयं शपथ करके कह रही हूं हम अपने पति से जो कुछ हिसाब निकलेगा उसका दोगुना मैं करके और जरूर नंद को दिलवा। इसमें एक बात आई, कृष्ण और बलदेव जी 11 वर्ष तक रहे इसमें लिखा है, ये जन्म से लेकर के, जन्म से लेकर के 10 वर्ष कितना 8 महीने वहां रहे, तो 4-5 वर्ष तो वो या 3 वर्ष तक तो वो मैया का दूध पिया, वो ही सामने नहीं आना चाहिए, ये भी गए देखो हिसाब कार्य है नहीं आना चाहिए। और इसके बाद में बचता क्या है, 11 वर्ष में से 3 यदि चला जाए तो 9 वर्ष बचता है, तो 9 वर्ष में वो 8 वर्ष, 8 वर्ष और 8 वर्ष में मान लिया कि रोज 1-1 किलो 2-2 किलो भी लें तो महीने में कितना लें और उस समय गोरस का दाम कितना होगा, बहुत सस्ता नहीं के बराबर। ये सुनते हैं कि नंदगांव में एक छाछ कुंड है, उसमें दही मथने के बाद में छाछ को कोई पीने वाला नहीं, तो मक्खन ही खाना ही, मक्खन ही खाना है खाएगा, कि वो छाछ का कुंड ही वो फेंक देते थे और वहीं पर छाछ जमा रहता, गाय बैल भी वहां के नहीं पीते थे, इतना छाछ और दूध होता, इसलिए कोई भी मूल्य नहीं। दूसरी बात, कोई कोई कहते हैं कि कृष्ण युवावस्था के प्रारंभ तक तथा 15 वर्ष की अवस्था तक रहे। तो इसमें भी सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं ये कोई इसमें असामंजस्य की बात नहीं है, क्यों श्रीमद् भागवत में तो देखा जाता है एकादश वर्ष क्यों लिखा गया, किशोर काल तक वहां रहे। तो किशोर काल कितने उम्र की होती है, 15 वर्ष तक उसकी स्थिति है किशोर की। उसमें भी एक चढ़ता हुआ किशोर है, 9 किशोर वयसंधि का है, एक मध्य वयसंधि का और एक व्यक्त है। तो उस समय व्यक्त 15 वर्ष तक का किशोर माना जाता है कृष्ण के लिए, गोपों के लिए, और किशोरियों के लिए 12-13 वर्ष की 14 वर्ष था। तो उतने दिन तक निवास किया, इसका सामंजस्य क्या होगा उसके लिए कह रहे हैं कि जिस समय अक्रूर राम और कृष्ण को ले जाने के लिए गोकुल में आए उस समय उन्होंने कृष्ण को किशोर रूप में दर्शन किया था, किशोर रूप में दिया दर्शन किया था। और जब कृष्ण कंस के चारुना मुष्टिक के पहलवानों से जबकि लड़ने के लिए गए तो मथुरा की किशोरी ने उसे देकर के क्या कहा था, किशोर मूर्ति कामदेव सक्षा, कामदेव ये किशोर मूर्ति में गोपीनांग स्मरण मूर्तिमान। इसलिए उस समय का भी किशोर वर्णन किया गया। वैसे तो कृष्ण जब तक रहते हैं इस जगत में धरा किशोर मूर्ति की रहते हैं, कभी भी वो जुआ अवस्था में नहीं होते, उनके मूछे और दाढ़ियां नहीं होती, कभी नहीं होता। ये भगवत्ता का एक विशेष लक्षण है, सब भगवान के लिए, किंतु कृष्ण के लिए विशेषकर। रामचंद्र जी को भी ऐसा देखा जाता है, 11,000 वर्ष की आयु में भी वृद्ध नहीं हुए, एकदम जुआ जैसे लग रहे हैं। और कृष्ण तो 100 वर्ष की उम्र में भी एकदम युवक किशोर ही दिखते हैं। उस समय किशोर कलेवर का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में आता है। अतएव जौवन अभी पदार्पण नहीं किया जिस समय कि कृष्ण ने कंस के अनुचरों को मारा, और किशोर कोने से 11 वर्ष ही समझ में आता है, किंतु कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में ही ऐसे मक्खन और दूध मलाई खा करके ऐसे हो जाते हैं मानो 15-20 वर्ष के हो। इसलिए रामकृष्ण कंस वध के पश्चात जब यज्ञोपवीत धारण किया और रंगभूमि में वसुदेव देवकी को प्रणाम किया और बोले हम तुम्हारे पुत्र हैं, वो ऐश्वर्य को देख करके ये कितना ये बलवान है, स्वयं भगवान है, इसलिए पुत्र भाव समाप्त हो गया और आए ये भगवान हैं। तो वो कह रहे थे हम लोग आपके पुत्र हैं, हमारे बाल्य पौगंड और किशोर उमर की लीलाओं को आपने अनुभव नहीं किया, कुछ उपभोग नहीं किया आपने, उस समय तो मैं वृंदावन में था, पुत्र होने पर भी मैं पुत्र था, किंतु आप लोगों ने वो भाव पौगंड किशोर अवस्था की लीलाओं से आप वंचित रहे। क्योंकि मथुरा में आते ही कृष्ण ने परम ऐश्वर्य प्रकट किया, अब वहां मथुराधीश हो गए जरासंध से कितनी बार युद्ध किया उन्होंने, इसलिए ऐश्वर्य भाव था। और कभी कभी शंख चक्र गदा पद्म भी धारण कर, यहां भी वैसा ही बाल्य बालक रहते हैं जब कृष्ण, तो अभी किशोर उम्र है, उसके लक्षण सब बतलाए गए, उसके उदाहरण दिए गए हैं उज्जलिन मणि में, किंतु वो साधारण आदमी सुनने के योग्य नहीं है। इसलिए कृष्ण का नित्य किशोर स्वीकार करने पर भी वो नित्य किशोर अवस्था में ही रहते हैं, अथवा किशोर का पंचदश वर्ष में भगवान गोकुल से मथुरापुरी आए, ऐसा भी किसी किसी ने कहा है। ये भी ठीक है सनातन गोस्वामी का, क्योंकि पंचदश वर्ष तक किशोर की शेष अवस्था रहती, और यही श्रृंगार रस का समय है। इसके बाद मथुरा आने पर श्रृंगार रस उनका समाप्त हो जाता है, वो नहीं रहता। इसलिए उसने जो कहा पद्मावती ने वो ठीक ही कहा, वो न्याय संगत। व्हाट आई टोल्ड हु विल स्टे, यू कैनॉट डि नॉट अंडरस्टैंड, शुड टर्न दोस।
Given all this, Padmavati, she asked, oh, why are you talking so much about wanting to be the Vasis? It's a very simple matter. How old is Krishna? Only 10 years, 8 months old. So 11 years. So this is nothing to even think about. Simply have to make an account. How much Krishna ate, how much Vasis drank in those 11 years? Subtracting 4 years, because for the first 4 years, Krishna only drinking personal from Maria Soda, so there is no cost to us. So we'll calculate how much they owe Krishna for his calories, how much food and water he ate, how much shot he drank, and whatever that amount comes, we give government enough. Nothing to be confused about. So we can ask that Gargamuni is the most expert astrologer, he will know you at least one place. The Guru Maharaj is commenting, the judgment is possible. How much Bhagavan can bring out? There's so much there, because then nobody drinks charge, Bhagavan. After taking the Bhagavan out of the milk, what is left is charged and so useless that it throws down the drains and it goes into one big charged pool there in underground. So what is the price for charge? Nothing. So, Krishna Balaram, 10 years and 8 months, take away 3 years for only drinking personal, but only 8 years of drinking charge, it's nothing. So, it's a little confusing. So, what am I saying? Some people are saying Krishna's Kishore is stuck after 10 years and 8 months. And some people are saying that Kishore stays after 15 years. It's just not because some people are reconciling everything, saying there's nothing to be confused about. That Krishna has three ages. Bhagavad, Pauganda, and Kishore Avastha. So sometimes at the junction between the three edges, this is called Vaisanti. And the last stage of this three is called Vaikta. It's about 15 years. So,
that's
the thing that's taking a little bit. Vyakta, Vaikta. In Shorana Sthana, each of these three stages have three stages in Shorana Sthana. So when a guru came to Vrindavan, he saw Krishna as Kishore. And when Krishna went to Mathura to fight Chandra Mosde, that time, Mathura Ravati, they also saw Krishna as Pandya Bhavati, like Prasanna Krishna Pandya. Therefore, they also saw him as Kishore Arista. So, one speciality of Krishna, and also the Lord Bhagavan Sri Ramachandra, no matter how old they appear in this world, they never appear beyond Kishore Arista, very Kishore. For example, even when Krishna was in Kurukshetra, that time was 125 years old, Krishna had no knowledge of Gadi, no knowledge of Ashram, weird. And this is one speciality of Bhagavatam, that Gadi was Ashram, weird. So the Bhagavatam is describing that Krishna's Kishore Arista is up to 11 years old. But we can make ourselves thinking that because Krishna has been about to make so much rasa, that he appeared like 15 years old. Son of a king, as well as he was older than he actually was. So when Krishna came to Mathura, he did pronounce to Mother Devaki. And that's when he prayed, "Oh, Mother Devaki, we are your sons." So as soon as Mother Devaki heard this, so much Aishwarya Bhav came to her, she became afraid. Krishna said to her, "Unfortunately, after our birth, we were taken to Vrindavan. That means that people do not see our pastimes and body of stuff and program that stuff and show the stuff. In this way, you achieve it. Who does my pastimes?" So, in Mathura, how much opulence is there? So much is there. How many times did Jarasthani come to fight with Krishna? 17 times. Sometimes Krishna and Mathura manifest as some type of Gaurav Padma. So, the symptom, Mathura, so much opulence is there. And what are the symptoms of Kishore Arista is given in the Vajra Navari, Guru Maharaj says, come into Sadak and don't be able to understand.
Why do you mean, if you're not too sure, you have to be able to understand. So, I see, when you're not sure, you're able to understand. What we want to do again, we said before, we need to give the whole thing to you. Do you know?
परसे जी ने अपनी मैया से कहा, हे माता जी, कृष्ण ने पद्मावती की बात सुन करके भी उस पर कोई ध्यान नहीं, मानो सुनाई नहीं, इसीलिए ब्रजवासियों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? उद्धव जी से पूछा, इस प्रकार से पूछा मानो वो कुछ जानते नहीं, अज्ञानी व्यक्ति कुछ नहीं जानते। इसका भी कोई कारण विशेष है, वो कारण ये है, मैं तो ब्रज में जाना चाहता हूं किंतु यहां माताजी हैं और पिताजी और मथुरा के लोग हैं, वो दुखी होंगे। इसलिए उद्धव यदि कह देगा कि ब्रज में आपका जाना ही उचित है, उसके बिना वो मर जाएंगे, तब फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बात से कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, तुम तो बोलो भो विद्वद् तत्त्वज्ञ अखिला भी प्राय विद भवा, आप ब्रज में गए, काफी दिन वहां रहे, ब्रजवासियों से घुले मिले, नंद बाबा से, गोपियों से भी, और उसके बाद में उनकी भावनाओं को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और आप उन्हीं सब का विचार करके हमें बतलाइए, मैं उन्हें क्या दूं, कैसे वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि देवकी जी ने भी ऐसा कहा था जो तुम उनको जो देना है सो दे दो। इसलिए पूछा देवकी मैया का भी आप अभिप्राय है, तो मैं अपने मन से करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उद्धव ही बतलाए और तब फिर मैं कहूंगा जब उद्धव तो हमारा मंत्री और सुहृद है, इसने जैसा कहा वैसा मैंने पालन किया, दोष हमारे ऊपर नहीं आए, वो उद्धव के प्रति ही आएगा। इसे सुन करके उद्धव जी हृदय में बड़े दुखित हुए, बहुत दुखी हुए कृष्ण की बात सुनकर, और क्षण भर तक लंबे दीर्घ निश्वास को छोड़कर और फिर बड़े अनुताप के साथ में दुख करते हुए बोले, क्यों? इसलिए उद्धव प्रेम में विवश है, ब्रज में गए, गोपियों की दशा देखी, गायों की दशा देखी, सारे ब्रज को देखा, एकदम सुना, और बछड़े गाये हैं कि मर गई, गोपियां भी कुछ हैं कि नहीं जब से लौटे हैं, इसलिए वो सोच रहे थे कि यदि कृष्ण, हमने भी प्रतिज्ञा की थी ब्रजवासियों से कृष्ण को लेकर के ही आऊंगा, और जब यहां आया कृष्ण दुखी तो हुए किंतु गए, और फिर वही बातें हमसे ये पूछ रहे हैं, मतलब क्या है? भगवान इस विषय को जानते हैं, कृष्ण इस विषय को जानते हैं कि ब्रजवासियों का क्या अभिष्ट, वो क्या चाहती हैं, राज्य चाहती हैं या ब्रजवासी लोग चाहते हैं नंद बाबा इत्यादि राज्य चाहते हैं, नहीं, वो क्या चाहते हैं, किसी प्रकार से हमारा बेटा ब्रज में लौट, किसी प्रकार से हमारे प्राण बल्लभ कृष्ण लौट, इसका अतिरिक्त और कुछ भी वो लोग नहीं चाहते हैं, कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु फिर भी उद्धव जी से उन्होंने, और उद्धव जी भी इसको समझ करके, देखो तो कृष्ण कैसे चतुराई से बातें करते हैं, है भीतर से निष्ठ, जानते हैं कि मेरे गया बिना, मेरे गए बिना उनको सांत्वना नहीं होगी, किसी को भी नहीं सांत्वना होगी, यहां तक कि गायों और बैल बछड़ों को भी नहीं, गोपियों की तो बात ही क्या, तथापि हमसे पूछ रहे हैं, इसलिए ये अनजान की बातें क्यों पूछ रहे हैं, जाने की इच्छा नहीं है शायद, कुछ टाल बहाना कर रहे हैं, इसीलिए उद्धव जी गोपियों के प्रेम से विवश और उनके भाव को समझ करके कुछ विचार किया कि ये कृष्ण क्यों बोले, उनके कहने का तात्पर्य क्या है, और फिर समझ करके बड़े विषाद करते हुए दुख प्रकाश करते हुए बोले तत्सुत्वा, यही बतला रहे भगवान सर्वज्ञ हैं, चाहे वो ब्रज में हो चाहे जहां भी हो, दो बातें उनके साथ में रहती हैं, वे मधुर रस का आस्वादन करते हैं, फिर भी उनकी ऐश्वर्यमय शक्तियां उसी में रहती हैं, माधुर्य जी के द्वारा वो आच्छादित रहती है, किंतु समय समय पर वो प्रकटित हो जाती है, इसलिए सर्वज्ञता और मुग्धता दोनों बातें एक ही साथ में, सर्वज्ञ है, कोई भी भक्त मथुरा वृंदावन में रास कर रहे हैं और कोई भक्त उनको पुकारता है, यदि द्रौपदी ने कर्ण स्वर से उनको पुकारा तो वो पुकार उनकी कान में जाएगी कि नहीं, तो जाएगी, इसलिए वो सर्वज्ञ भी है और साथ साथ में क्या है, मुक्त माने क्या, ओ अबोध की भांति कुछ नहीं जानता हूं मन ऐसे, तो सर्वज्ञ और परम परम दयालु शिरोमणि भगवान, उनकी इन बातों को सुनकर के उद्धव बड़े दुखी हुए, और सोचा उन्होंने जी ये वंचना मात्र है, केवल ये वंचना कर, जाने की इच्छा नहीं है इसलिए ऐसा ही कर, मैं तो उनको चला जाना चाहिए, जिस दिन मैं वहां से ब्रज से लौटा इनको बतला उसी दिन इनको चलना चाहिए, तात्पर्य क्या, क्यों वंचना कर रहे हैं? तादृश प्रियजन जो ब्रज के लोग हैं, नंद बाबा, यशोदा, सखा लोग, सखियां, उनके प्रति कृष्ण का ऐसा व्यवहार, रूढ़, ऐसा निष्ठुर व्यवहार, वो विचार करके विस्मित हो गए। हमने सोचा जाए इनका चित्त भी द्रवित हो जाएगा, तो नहीं हो, ऐसा क्यों हुआ? ब्रजवासियों के संग से अक्रूर का नहीं हुआ और लोगों का नहीं हुआ, किंतु इनका क्यों हुआ? कुछ तो ब्रज का भाव आएगा ही, इनके प्रति सहानुभूति आएगी, क्योंकि उन्होंने वंदना की, आशा महो वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादेश जा वही आजाद भी आप तथा मई इत्यादि, ये बतलाया उनकी महिमा, इसलिए कुछ तो उनके अंदर में, इसलिए ये विश्व ऐसे ब्रजवासी जो उनके लिए बड़े कातर विरह में हो रहे हैं और इनकी वो वंचना कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं इनके समझ में नहीं आया। हाँ, किंतु कृष्ण के भीतर में जो भावना है, मेरे जाने से भी उनको सांत्वना नहीं होगी, शायद ये इस बात को नहीं समझ रहे, इसलिए क्या कहने लगे, उद्धव वाच न राजस्वरता विभूत न दिव्य वस्तु चते भवंत न काम कामयन्ते अन्य किंचित अमूत्र प्राप्य प्राप्य प्राप्यते भवंतम। वो नंद बाबा ब्रजवास और गोपियां आपसे कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी, उनका प्रेम कैसा है, निस्वार्थ अन्ना विलासिता सुन, इसकी ये चरम सीमा तक है गोपियां, उनसे बढ़कर के और नहीं, और लोगों का कुछ हो सकता है किंतु गोपियों का एकदम अन्ना विलासिता रही, और निरंतर कृष्ण की सेवा में तन मन वचन से उनकी है, और वहां तक पराकाष्ठा तक खरीद ले सकते, वे कोई भी विभूति राजस्वर्यत्व अथवा पारिजात इत्यादि स्वर्गीय वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करते, द्वारकावासी चाहते हैं, इसलिए कृष्ण ने पारिजात पुरुष बुलाया ओ सत्यभामा के लिए, और स्वर्ग का वो राज्यसभा वहां पर ले आए उन लोगों को, इन लोगों को तनिक भी कोई कामना वासना नहीं है, आपके अतिरिक्त, आपके विजय के अतिरिक्त, अर्थात आपके ब्रज में जाने के अतिरिक्त कोई भी लौकिक और पारलौकिक कोई भी भोग द्रव्य की उनकी कामना कदापि नहीं है, इसलिए यहां तक कि गोपियां कहती हैं अश्लीष वा पादरतां यदि कृष्ण को ब्रज में रह मथुरा में रहकर वो द्वारकावासियों मथुरा वासियों के साथ में रहना उनको पसंद है, उसमें उनका जी चाहता है वहीं रहे, यहाँ पर लौट करके ना आए, चाहे उनके विरह में हम मर छटपटा करके मर जाएंगे, तो अभी जान को सुख मिलता है वहीं, नागनी अपने दुख सबे बांछी तार सुख, मोरे जदि दिले दुख तार भई महासुख से दुख मोर सुख, यदि कृष्ण हमारे हृदयों को पीस दे दुखों से, हमारे सामने अंड बालावल से वो मिले, वहां लंपट दुराचारी भी हो तो भी हमारे दूसरा कोई, इसलिए कभी उनके अंदर में ऐसी कोई भावना नहीं आई, इसलिए कृष्ण यदि मथुरा में और द्वारका में सुखी हैं तो सुखी रहे, हम लोग दुख से मर जाए, किंतु वही पर जाते समय ब्रज को मथुरा लौटते समय उद्धव ने पूछा श्रीमती जी से, उन्होंने तो आपके लिए संदेश दिया था, किंतु आपका कुछ संदेश कृष्ण के प्रति है, तो वो बोली नहीं, फिर दूसरी बात कहा, दूसरी बात, फिर तीसरी बात बोली कि आपका कोई संदेश हो जो कृष्ण शीघ्र यहां पर लौट आए तो मैं उनसे कहूं। उन्होंने कहा कहना मत, मत कहना, ये भी मत कहना कि आपके विरह में गोपियां तड़प तड़प करके मर रही हैं, उनका हृदय मक्खन से भी कोमल है, हाथ में लेते ही मक्खन पिघल जाता है, उसे भी यदि कृष्ण का हृदय, इसलिए कृष्ण हम लोगों का दुख नहीं सह सकेंगे, हो सकता है कि तुरंत शरीर को छोड़ दे, इसलिए मत कहना। वो वहां सुखी हैं, हम लोग भी उनको भूल चुकी हैं, उनको आने की जरूरत नहीं यदि उनको। इस तरह से ब्रजवासी कृष्ण के व्यतिरिक्त आपके अतिरिक्त उद्धव करें, आपके अतिरिक्त और कोई भी राज्य स्वर्ग विभूति इत्यादि की कोई भी कामना नहीं करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, और सुनने के बाद में स्वयं विचार करें, और विचार करके जो कर्तव्य है आप वही करें। आप मेरी बात को सुनिए, यदि अच्छी लगे तो करेंगे, और अच्छी ना लगे तो मत करिए। कृष्ण को आपने जब कंस को मारा, नंद बाबा गांव के बाहर में, मथुरा नगरी के बाहर में जमुना के तट पर गाड़ी के साथ में प्रतीक्षा कर रहे थे कब कृष्ण बलदेव आते हैं। उस समय वह दोनों नहीं आए, बोले देखो बलदेव तुम हमारा पुत्र है, यह बात ठीक है, किंतु तो भी बल देवकी के या वसुदेव के सारे पुत्र मारे गए हैं, केवल तुम ही है, तुम यहां नहीं रहेगा तो वसुदेव और देवकी दोनों मर जाएगी, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहां कुछ दिन बात करो। बलदेव बोले ये असंभव है, मैं कृष्ण को छोड़कर के एक सेकंड भी कहीं इधर उधर नहीं रह सकता, इसलिए आप कृपा करके कृष्ण के साथ में हमें ही भेज लेते थे। कृष्ण बोले आपके बंधु तो वसुदेव देवकी हैं, मैं जानता हूं कि बलदेव जी जाएंगे तो ये मर जाएंगे, और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए बलदेव का रहना अच्छा है, किंतु बलदेव रह नहीं सकता, इसलिए तो मैं यदि आप आदेश दें तो मैं भी कुछ दिन दो चार दिन कृष्ण के साथ में यहीं पर ठहर जाऊं, और फिर काम होने के बाद में हम दोनों भाई लौट आएंगे। नंद बाबा बड़े दुखी हुए, कृष्ण ने राजभवन से बड़े बड़े बेशकीमती हीरे जवाहरात इत्यादि के आभूषण इत्यादि और वस्त्र स्वर्णिम वस्त्र इत्यादि ले आए, और उनको ये मैया को दे देना, और मैया गोपियों को दे देंगे। नंद बाबा मन ही मन में सोच रहे हैं ये क्या हो, एक तो ये गया नहीं, यशोदा से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जरूर कृष्णा और राम को ले करके आऊंगा, एक तो मैं नहीं ले जा सका, और ये गहना और ये अलंकार ले जा रहा हूं उनको दोनों से, कह ये तो बेच करके आया कृष्ण को और बलदेव को बेच करके आया, मैं कैसे मुख दिखाऊंगा। किंतु कृष्ण के अनुरोध करने पर ले तो गए, और बोले यशोदा मैया से और गोपियों से, देखो ये आभूषण स्वर्ण अलंकार इत्यादि भेजा उसके सुख के लिए तुम लोग, और कुछ दिनों में वो जरूर आएगा, क्योंकि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, परम सत्यवादी है, इसलिए जब आएगा तो देखेगा जैसे तुमने धर्म नहीं किया तो वो बड़ा दुखी होगा, इसलिए तुम लोग तो इसलिए कृष्ण की प्रीति के लिए ही उन लोगों ने धारण किया। किंतु बोली थी पहले, क्या आपने इन आभूषण के बदले कृष्ण को बेच करके यहाँ पर आए हैं। आनंद बाबा उस दिन से घर से कभी नहीं निकले, कभी निकले नहीं, इसलिए कह रहे हैं आप, मैं जो कहता निवेदन कर रहा हूं आपके चरणों में, आप बड़ी सावधानी से सुने। यदि आपको अच्छा लगे तो करें, और ना अच्छा लगे तो मत करो, मैं उसमें कर ही क्या सकता, ये आपके इच्छा के ऊपर निर्भर है।
So, continuing. So, when the healing and Gautamasi heard the comments of Padmavati, that he should work out how much he wants Mother Baba to hear, they simply ignored it. Definitely, but she is very ignorant. So, Krishna has a desire to go to Vrindavan, but at the same time, Krishna is thinking, but if I go to Vrindavan, then what will happen with Vasudeva and Devaki and all the other Gautamasi, and they will also die. So Krishna went away, he asked Uddhav. Because Uddhav went to Vrindavan. So Uddhav knows everything. He stayed there for 3 months, he stayed there for many months. So Uddhav knows the heart of the Krishna and the Vrindavasis. So Krishna asked Uddhav, you know what the Vrindavasis wants? You know what I can give, what I can do for them? Because Krishna was thinking, if I say by myself, I want to go to Vrindavan, then everybody will blame me. But if Uddhav says Krishna should go to Vrindavan, then no one will blame me, everyone will blame Uddhav. Because after all, Uddhav is Krishna's friend and advisor and minister. Krishna is very clever, asking, and Krishna began to cry. So Uddhav was seeing everything and hearing everything that Krishna said. Uddhav became very astonished. What is this? Because Uddhav said, I went to Vrindavan and I promised all Vrindavasis, I will bring Krishna back anyhow, by hook or by crook. So Krishna is Bhagavan, he is Savadhyaya, all knowing. Therefore, he knows everything. Then why is he asking me what the Vrindavasis want? Krishna, the Vrindavasis don't want any type of opulence, they don't want any type of payment. They're not interested in anything material or spiritual in the three worlds. What do they want? They only want that my Krishna, my son, and my Panabala should be chosen again here in Vrindavan. So we began very disturbed. He's thinking, Krishna is very crooked. He's very clever. He knows everything, but still he's asking me. What does that mean? Would have thought, that means that Krishna does not really want to go to Vrindavan. He is just cheating everyone by asking him. So, in whatever position Krishna is situated, in Vrindavan, in Mathura, in Dwarka, or anywhere, he is always Saranya. That means he knows everything. So, in Mathura, he is fully situated with his Swarishakti. And in Vrindavan, he is also Saranya, all knowing. And sometimes he manifests that knowing everything. So, Krishna in Vrindavan has two things fully present with him at all times. At one time, he is Mukta. That means he is only like an ignorant child. He doesn't know anything. Now, on the other hand, he is Sabhagya. That means he knows everything. For example, when Krishna is doing Vasudeva with his gopis and playing with his flute, and that time, Draupadi, she is in a Singapore calling, oh no, Kusatsana is stealing my cloth. Krishna, save me, save me. Does Krishna know? Yes, Krishna knows even at that stage. So Uddhav was thinking all these things. Krishna knows everything, but he is very cruel-hearted and just a cheater. His behavior is very poor. But he said, otherwise, why is he asking me all these things? So an interesting thing that told me, Akura went to Vrindavan, but Akura's heart did not melt. When Uddhav went to Vrindavan, Uddhav's heart melted a little bit, and something came to him. Why? Because Uddhav had so many stars and studies and prayers and the feet of the gopis. Therefore, by the mercy of the Vrindavasis, something also came in the heart of Uddhav. So all the Vrindavasis are niswad. That means they have no self-interest. And then all the Vrindavasis, the gopis, are the topmost. Therefore, they have the complete definition of anyanukasa-dasa-dhyan-dhanakava-adhyabhata. They perform the Nirantara-seva, continuous seva to Krishna. The Vrijdvasis are not interested in any type of material opulence from Swaga or from anywhere else. So this is the difference between the Vrijdvasis and the Gautamasi. For example, yesterday we heard how Satyabhama, she wanted the flower, the Parijat flower from heaven, and how the Gautamasi wanted the Raja Sara from his alone. Therefore, even the Gautamasis have some type of desire for something from Swaga, the heavenly planets. But the Vrijdvasis, they're not interested in anything material or spiritual. They're only interested in having the lotus feet of Krishna again and serving him. Like Gopis pray, Asi Sava, Pradapanashtamam, Adashamamam, Adhamukharodhiva. The Gopis pray, oh, if Krishna is happy there in Mathura, if Krishna is happy there in Dwarka, then we don't want to force him to return to Vrindavan. If he is happy there, then let him stay there happily. Like Radharani prayed, Nagani Apanesu, Kalamaksha Pasu, Pasu Kamaraka. Radharani prayed, I don't want my own happiness. What do I want? The goal of everything is for Krishna's happiness. So Krishna can do anything he likes. He can make me happy by embracing me, or he can cross my heart on the leaving street. Even though he is watching it full of many bad qualities, still, he is mine. So when Buddha saw all the prayers of the gopis and Vrijdvasis, when Buddha delivered his sandesh to Krishna. That's why Buddha was thinking, maybe the gopis want to give some message back to Krishna. Therefore, Buddha asked three times, is there anything you want to say to Krishna? Is there anything you want to say to Krishna? But the gopis, Srimati Radhika said, oh, no way to give any message to Krishna. In fact, you should not mention that we are suffering separation from Krishna in any way. Say that we are very happily here residing in Vrindavan. Because Krishna's heart is very soft, more than Vata. So Krishna knew that we are suffering in his separation. And maybe Krishna also experienced great suffering, and maybe Krishna himself may even die. So we would say, thinking all these things, we would say, oh, I can give advice, but I don't know if that advice is good, or I don't know if that advice is bad. You can decide for yourselves. So after Krishna killed Kamsa Chaturmukhsit and his friends, that night, none of them was waiting in his male brother, Mulukha, just outside Vrindavan. So, he was waiting, but that night Krishna never returned. But the next day, somehow Krishna Balaram escaped and came to see Nanda Balaram on his car. So, Baladev, it's true, he's, we can say, the son of Baladev. So, like a clash of interest. So Krishna is thinking what to do. Should I stay in Mathura? Should I return with Nanda Baba back to Vrindavan? So, Krishna began to say, oh Baba, Nanda Baba, is it true? Baladev and Devaki are your friends. So, Devaki, she has lost her six sons. She has no sons, no one to come from her. So, what should we do? So Nanda Baba suggested, I think that Balaram, he can stay in Mathura for a few days. So Balaram said, that is quite impossible. I cannot be separate from Krishna. So Nanda Baba was in a helpless situation. What to do? So, considering everything, we agreed that Krishna and Balaram would stay in Mathura just for a few days. And afterwards they will return to Vrindavan. So now Krishna has become king. So Devaki gave many, many ornaments, his armor and the necklace. So as a token of his affection, Krishna gave all his jewelry in the hand of Nanda Baba. And Nanda Baba empty handed accepted the jewelry and returned to Vrindavan. That time was the condition of Nanda Baba. Nanda Baba had promised, your mother is so level with the masses. Oh, don't fear. I take a promise, I must bring Krishna Balaram back to Vrindavan. But when Nanda Baba came back, what did he have? No Krishna Balaram, only one pile of jewelry. So all Vrijdvasis became very sad, and they began to accuse Nanda Baba. Oh Baba, what have you done? Have you sold Krishna Balaram? And this is the price that you got for him, his jewelry? So Nanda Baba was very sad. So Nanda Baba said, no. My son of Mishra Satyabhadi, that if anything he says must come true. Therefore, he said, Krishna, talk about affection to you. So Krishna returns to Vrindavan, which he said he would return. And if he sees all the people not wearing his ornaments and decorations, then Krishna becomes very sad. Therefore, all the people Krishna should wear his ornaments.
Suppose Krishna is totally absorbed in tasting Rasa Leela. Totally absorbed. And at that time, if anyone who is even a Saranagat Bhakta, he is praying for Krishna. Saranga Saranagati. कोई भी जहां तहां प्रार्थना सुने अनंत कुमार तो इफ कृष्ण इज टोटली ऑब्जर्व्ड इन वृंदावन इन रास लीला डे एंड नाइट सर्विंग राधिका देयर हिज लोटस फीट एंड इफ एनीवन एनी भक्त लाइक द्रौपदी एनी भक्त लाइक गजेंद्र or any Saranagat Bhakta, if praying with what? With core of their heart, who will hear? Because Krishna is totally observed there, who will hear? Anyone can tell that, the manifestation of Krishna, that is Paramatma, who is Sakshi, he will hear. But he is not praying to Narayan or
Paramatma Kshira Gosai, he is not praying. He is praying to Krishna, Nanda Kumar. Krishna is bound to hear. That is why I told that he is Sarvajna and at the same time he is Mukta. He is Mukta. Because at that time, Yog Maya serving him, she is fine. Searching any occasion that I can measure and she serves. Krishna does not know all these things, but even, she does that. अब हम लोग विषय पर अपने आते हैं. नंद बाबा गहने ले आए, अलंकार ले आए और ले करके गोप गोपियों के सामने रखा. अरे बड़े कष्ट की बात, बड़े दुख की बात है उद्धव जी. उसे देख करके गोपियां कह रही हैं या ब्रजवासी, हम लोगों के जीवन को धिक्कार है, बहुत धिक्कार है. अभी हम लोग बच कैसे रही हैं. कृष्ण ने यही अंत में सोचा जी, हम उनसे आभूषणों की अपेक्षा करते हैं, हम उनको नहीं चाहते हैं. जो कृष्ण आ रहे हैं और अलंकार रुपया पैसा भेजते रहे, जैसे कोई एक व्यक्ति विदेश में सर्विस के लिए गया, वहां पर रुपया वो कमा रहा है, रुपया कमा रख करके और भेज रहा है मनी ऑर्डर से अपने घर वालों. घर वाले कहते हैं अच्छा है, यदि रुपया नहीं भेजता तो हमारा जीवन कैसे चलता. ये स्वार्थ है. ऐसे गोपियों का ये धिक्कार है हमें. जो कृष्ण ने यही समझा, हमारे प्रेम का यही मूल्य है आभूषण, ये सोचा धिक्कार है. हमारे प्राण इसको देकर के निकल नहीं रहे हैं, धिक्कार है, धिक्कार. हमारा हृदय वज्र से निर्मित है. कृष्ण को छोड़कर के ये बसन और भूषण नंद बाबा ने लाया हमें और कृष्ण ने भेजा, ये नंद बाबा को भी धिक्कार है. अपने को तो धिक्कार दे रही है, नंद बाबा को भी धिक्कार. और कृष्ण के लिए सोच रहा है जो कृष्ण ने यही समझा कि हमारे प्रेम का मूल्य. हो प्रभु, आपकी मैया यशोदा और उनके साथ में समस्त ब्रजवासी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर आयाश्चती. आपने प्रतिज्ञा करके उनसे कहा मैं आऊंगा तो कल नहीं तो परसों जरूर आऊंगा, इसीलिए अपने प्राणों को धारण करेंगे आएगा, और यदि हम मर गए तो क्या होगा. उसी को चैतन्य चैतामृत में बतलाया गया है कि हम तो मर जा गई होती, मत क्यों नहीं हो, इसलिए कि यदि वो आएगा फिर देखेगा जी हम नहीं है तो भी मर जाएगा. तो वही प्रिया धन्य है जो है चैतन्य समझते. प्रिय और प्रियतम दोनों धन्य है, वो जो प्रिया के लिए अपने जीवन को रखता है वो प्रिय धन्य है, और जो प्रियतमा अपने प्रिय के लिए ही जीती है वो धन्य. चैतन्य चैतामृत एक अद्भुत ग्रंथ, वही प्रेम होती है जो मर नहीं जाती बल्कि उनके लिए जीवन धारण करती है. देखो राधिका जी तो ये कहती हैं, ये हे मालती हमने तुम्हें लगाया मालती का पौधा, अब वो पुष्प देने योग्य हो गए. तो कहती हैं विरह में, देखो अब तो मैं मर रही, जब कृष्ण आएंगे तो ये फूलों का हार अपना जो मिला करके और कृष्ण को पहना दे और कहना जो तुम्हारी चिंता करते करते जब कितना विरह बैठा. तो जसोदा मैया, उस समय में जब देखा अलंकार तो आप आएंगे, तुम आओगे, इसकी आशा को संपूर्ण रूप से छोड़, अब नहीं आए, अब तक आशा थी छी आएगा, जरूर आएगा, किंतु अब वो आशा भी लिप्त उठ गई और मृतक की भांति मृतपाय होकर के अनशन व्रत पर बैठ गई। खाना पीना सोना सब कुछ यशोदा मैया ने छोड़, उन गोपियों की क्या दशा होगी? यदि यशोदा मैया की ये दशा है तो उनकी क्या दशा होगी? पिता अपराध वत नंदो भक्तम किंचित दिनत्रय अशक्तो अत्यंत शोकवार शोकार्थो ब्रज प्राण प्राणान गतान। नंद बाबा भी ब्रज में जब गए तो अपने को ब्रजवासियों का अपराधी समझा, हमने बहुत बड़ा भारी अपराध किया, ये अलंकार लेकर के क्यों लिया? कृष्ण शरण रोध से तो लाया, किंतु उनको देखने से इनके प्राण विकल हो रहा है, जी अब कृष्ण नहीं आएगा, मैं इनको कैसे समझाऊं, विकल हो गए। 3 दिन तक कोई बात नहीं किए, इनके दिल त्रय कुछ भी बात किसी से नहीं किया, घर में पड़े रहे औंधे मुख को करके, और पीछे भी शोकार्थ अत्यंत काकुल होकर के, मानो प्राण उनके कंठ तक आ गए हैं। ऐसे ब्रजवासियों को देखकर के उनकी प्राण की रक्षा के लिए 3 दिन के बाद में शपथ करके बोले, कि हमारा बेटा जरूर आएगा, परम सत्यवादी है, आप लोग चिंता मत करें, जरूर आएगा जरूर आएगा। विश्वास उत्पन्न किसी तरह से कराया, कैसे? विविध प्रकार की चातुरी से उनको सांत्वना किसी प्रकार से किया, ये ब्रज की नौ।
So when Krishna returned the jewels, you could think of what other Krishnavasis, especially the jewels, were thinking, oh, they thought, and deep down, fire on us. Because we have so, this is how little Krishna appreciates our prayer for him. Because he had given these jewels as like a repayment, so we are the most unfortunate. Just like Guru said, someone goes to foreign country like Dubai, and they're working there, and they send some money every month to the family. What is this? Will the family be happy? No. This is only one time of self-interest. So the gopis look at the lady, this is how little Krishna, that is our mama. So we are lost in fortune. So the gopis were crying, fire on us, and also the fire from Nanda. So, the only reason the gopis and the Vrijbasis had not died is because Krishna had promised, I will return the day after tomorrow. So this is all explained in the Chaitanya-charitamrita. The Chaitanya-charitamrita is saying that Priya Priyatam, she is very fortunate because she is only the happiness of Priyatam. And the Priyatam, she is most fortunate, she is only the happiness of Priya. So this is called Pyong Bhagavan, both of them only for the happiness of one another. So this is described in the Charitamrita from the same very wonderful explanation. Like Ramani, what is her separation? When she has a cloud garland, she gives to Lalita in the hand of Lalita. What is that? When I die?
Malati. Vishnu. Plants and plants. And now the flower is about to come, but Ramani cannot keep her alive.
So, So you tell Krishna, I died thinking of you. So when we saw that she was waiting with Vrindavan, that time she had some hope, Krishna must return. When she saw the dog coming in the bag of jewels, then her last hope was completely smashed and finished. So she gave up everything, eating, sleeping, everything, and just wept day and night. So this is the position of my disorder, can you imagine the position of gopis? Uddha is thinking, what can we do now? I cannot do it again because I've come to the gopis without a return and death to Hare Krishna. So Narada, he was reading a crime for 2 days, and his life bears to come up to his throat. Someone died, their life has come out of their mouth. So none of those life has come to him, but he did not die. Because he was thinking, if Krishna comes back to Vrindavan, we're going to all get it, how much you experience suffering and pain. Therefore, for Krishna happens, we should live. So none of those was thinking, no, my son is from Satyagati. He is always telling the truth. Therefore, we have to have faith in his words. When he says he will return, he must return. So this whole of that world is the last of 2021.
Uddhav ji ne kaha ki aapne swayam kaha tha Nanda Baba ko. Kya kaha tha? Gyatin wo drashtum esyamu vidhaya suhidam. Suhidam mane hota hai bandhu bandhu. Aapke jo mitra ya bhai jo Vasudev Devaki ityadi hain, yadav log hain, उनका कुछ दिन तक सुख विधान कर मैं ज्ञाती हूं. आप जो हमारे ब्लड रिलेशन से युक्त आत्मीय जो स्वजन है, आत्मा से संबंधित, आप लोगों को देखने जरूर जाऊंगा. नंद बाबा यही उद्धृत कर रहे हैं ब्रजवासियों को और सांत्वना दे रहे हैं शपथ बात को कहकर कि देखो हमारा पुत्र बड़ा सत्यवाद है. उसने ऐसा कहा है कि मैं अविलंब बहुत शीघ्र ही इन लोगों को शहीदों को सुख विधान कर मैं शीघ्र ही आप जो हमारे आत्मीय हैं आपसे जो मैं पैदा हुआ हूँ आपका पुत्र हूँ मैं आप लोगों को दर्शन करने के लिए आऊंगा. तो वो जरूर आएगा, कभी भी झूठ नहीं बोल सकता. इसलिए नंद बाबा तरह तरह की युक्ति इत्यादि का अवलंबन करके उनको समझा रहे हैं. द्रव्याण आदो प्रेम चिन्हानी पुत्र एतान्यत्र प्राणिनो तो सत्यवाक शीघ्र पश्चात आगमिष्यत अवश्यम तत्र स्व प्रस्तुतार्थ. हमारा जो अभी कुछ काम रह गया है, दूसरों का संघात करना, अभी जरासंध इत्यादि है, बाउंड्री इत्यादि का भी संघात करना बाकी है, यह काम पूरा करके जरूर मैं आऊंगा. इसलिए आप लोग उस पर विश्वास रखो, हमारा पुत्र कभी भी झूठा नहीं है. इसलिए इस तरह से नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने लगे द्रवणा तो प्रेम चिन्ह. और ये जो अलंकार देखा भेजा, ये तो प्रेम का चिन्ह है और कुछ नहीं, जिसको हमारे पुत्र ने भेजा. इसको देखकर के क्यों विराग्नि में तड़पती हो तुम? प्रेम का चिन्ह ये इसलिए उसने जो भेजा है प्रेम का चिन्ह, इसे आप लोग धारण करें. और जब वो आएगा तो देखेगा तो वो प्रसन्न होगा जी हमारी भेजी हुई चीजों को इन्होंने धारण. इसलिए आप लोग तनिक भी शोक मत. बस
कृष्ण only for this reason I am staying here with them to give them some time of happiness, Supradana. So Baba, when he saw this message, he was telling all the Vrindavas, just see, my son is truthful, he must return, just like he said. Krishna wrote, oh, Nanda Baba, you are my life, life of my life, therefore I must come to see you again. So Nanda Baba, he was meditating to himself, three words, many times a body, without all the basic to understand. Oh, Krishna just has a few truths there in the Torah, like the King Jarasandra and a few other things. But when he is finishing, he will never return in a few days. So none of the Tolkien Rishabhasana, his jewelry, this is not a sign of Krishna's neglect. This is actually a sign of his caring for us. So when Krishna returns and he sees us wearing all his jewelry, then Krishna will become very happy because we follow his instructions.
ब्रजवासी लोग बड़े सरल चित्त के होते हैं। श्रुत्वा थे तत्र विश्वस्य सर्वे सर्वत शरण मानस। ब्रजवासी लोग बड़े सीधे साधे, छल कपट राजनीति इत्यादि से बहुत दूर रहते हैं, केवल प्रेम ही जानते हैं। इसलिए उन्होंने सरल रूप में नंद बाबा के वचनों पर विश्वास कर लिया और उन अलंकारों को भी धारण किया जो कि कृष्ण ने भी जो ये प्रसन्न होगा हमको देकर के। ओ भगवान स्वयं अगत्वा तू जत संदेशम समर्पमाम प्राणोत्तेन ते सर्वे भगवनीता। और इधर में आप कैसे, आप वो तो सरल चित्त और आप ऐसे कुटिल चित्त वाले हैं जो वही सरल ब्रजवासियों का भी चित्त दुखा रहे हैं। अब वो मरने के प्राय में है, क्यों इतना सुन करके भी आप ब्रज में गए नहीं, लौटे नहीं और हमारे द्वारा अपने संवाद भेजवाए, उसका इसका फल ये हुआ। मैं उनको सांत्वना तो दिया किंतु उस सांत्वना से उनकी बिरादरी और भी अधिक बढ़ गई और उन्होंने ये ठीक किया जैसे अब कृष्ण कभी नहीं आए, इसलिए अब तो एकदम मरने के कागार पर। ब्रजवासी लोग, उद्धव जी कहते हैं कि ओ ब्रजवासियों का इतना कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और आपका उनके प्रति ऐसा कुटिल व्यवहार, मन में चिंता था, इसी के लिए वो कह रहे हैं हमारे द्वारा आपने संवाद क्या भेजवाया संवाद। अरे मैं कहां नहीं हूं, मैं तो सर्वत्र हूं, ध्यान लगाने से ही मुझे सभी लोग सब जगह देखे। जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़ा में मिट्टी का कोई भी अभाव नहीं, सर्वत्र मिट्टी ही मिट्टी है। उसी तरह से मैं, मुझसे ये जगत उत्पन्न हुआ और सारा लोक समाज हमसे प्रगट हुआ, तत् मैं ही हूं। ज्ञान दृष्टि से देखो मेरे अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझसे जुदा नहीं हो, अलग नहीं हो। मैं तुम लोग इच्छा करने पर भी मुझसे अलग नहीं रह सकते क्योंकि हमसे ही बनी हो और आप लोग बने हैं। ये ज्ञान जो है तब तो भेजा, किंतु गोपियों ने क्या किया, इसी वृंदावन में उसकी गुदड़ी कर दी, हाट फूट करके और जमुना में बहा दिया और वो जमुना में बहते 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 गया, पहले गया इलाहाबाद प्रयाग में, जब गंगा में मिल गया और गंगा लेकर के क्या किया, अतल समुद्र में उस ज्ञान की गुदड़ी को बहा दिया। ब्रज में ये सब चीजें संभव नहीं है, इसलिए कह रहे हैं वहां अंतर्जामी मैं सर्वत्र हूं, तुम इस ज्ञान दृष्टि से हमको दर्शन करो, समाधि लगाओ। गोपियां और बिगड़ गई मेरे उपदेश को सुनकर और स्वयं उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी यही कहा था तो गोपियों ने उसका उत्तर क्या दिया था, याद है आहुष्यते ननीला पदार्थ संसार को पतितो तरणाम अलंबम देहम जुसामी। गोपियों ने खींच करके कहा अरे हमारी तो सब समय समाज सहज समाधि है, बचपन से ही आपके अतिरिक्त कुछ नहीं जाना, आपको भूल जाना चाहती है, आप भूल नहीं सकते। जो लोग समाधि से दर्शन करने की चेष्टा करते हैं नहीं देख पाते और हम उनको भूलने की चेष्टा करने की भूल नहीं पाते और हमको जो की शिक्षा दे रहे हैं, जो संसार कुप में पड़े हुए हैं उनके लिए आपकी भक्ति कैसी है? वो संसार को उसमें निकालने के लिए डोरी के समान है, हमें उसकी जरूरत नहीं। संसार को पत्तो तनावलंबम गेहम दुषाम मनसा, आप हमारे मन में विभो। मतलब क्या? हमारा मन और मन एक है, इसलिए वृंदावन में आप पधारिए तभी हम लोगों को तृप्ति होगी, संतुष्टि होगी, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत सब में है, पार्थिव वस्तुओं में सब, उसी प्रकार से मन प्राण बुद्धि इंद्रिय गुण समूह ये सब मैं ही हूं। तात्पर्य क्या? तुम्हारे सहित हमारा कभी वियोग ही नहीं है। उद्धव जी के साथ मुख से ये संदेश है, वियोग कहां है? देखो तो वियोग है, विचार पूर्वक ज्ञान की दृष्टि से देखो, क्योंकि मैं ही उपादान कारण हूं। उपादान माने मुझसे ही है, तुम लोग बने हैं, सब लोग बने हैं। अतः मन इत्यादि सब का सब जितने भी कार्य हैं, मैं अनुभूत रूप में सर्वत्र ही हूं, मैं ही हूं सब। जैसे चराचर विश्व का कारण पंच महाभूत है, उसी प्रकार मैं भी समस्त के द्वारा मैं हूं, उनका शरीर जो कुछ बना है वो भी उनका, इसलिए मुझको संदेश। इससे क्या हुआ? गोपियां और भड़क गई, उनकी विरहाग्नि और ज्ञान हमको दे रहे। इस तरह से उद्धव जी कृष्ण को निवेदन कर रहे, आप विचार करें अभी और कल भी बतलाएंगे। कल मैं कुछ विशेष कार्य से दिल्ली जाने वाला हूं, और फिर उदरी से उधर में मथुरा में ये कथा हुई है। अब तक ये कहां हो रही थी? वृंदावन में। अब ये कथाएं कुछ दिन होंगी, और फिर इसके बाद में वृंदावन में ही आऊंगा, हमारे परिक्रमा इत्यादि के समय में भी विशेष बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इन कथाओं का मर्म अच्छी तरह से समझेंगे। सो ट्राई टू रियलाइज ऑल दीज हरि कथा वेरी डीपली एंड ट्राई टू रियलाइज दिस इज एक्चुअली भजन, नथिंग एल्स इज So I think that you will not come. Yeah. So what should I do?
But instead, their celebration increased more and more. Oh Krishna, don't you know that Vrijvasis have unlimited love towards you, like an ocean? But still, Krishna is neglecting them. What is this? And Uddhava, yes, Krishna sent me one message to the Vrijvasis. And what message was that? Do meditation, Krishna said. Go to samadhi. Just like earth is everywhere. In the same way, I am everything and nothing is separate from me. So where is the question of separation? This universe made of punch wood, like one fire and ether. Mind intelligence, positive, this is all coming from me. So you, And everything in this world is nothing else but me. So therefore, I am Antaryami, I am all pervading. Therefore, you can perform meditation and see me in samadhi. So what is this? This is all jnana. So what did the Vrijavasa do with jnana? They put it in a cloth and throw it in the Yamuna, and it floats down to Varanasi. So, Krishna gave the same message to?
And not to me.
Krishna gave the same message to the gopis in Kurukshetra. The gopis hearing this, what happened? They became angry. The gopis are always in Sahaja Samadhi. That means natural samadhi. Walking, eating, moving here and there. They always think of Krishna. So the gopis said, don't tell us to do meditation. Because we try, we sit in meditation and try very hard to think of our husbands, our household duties, our bank accounts. We try very hard to forget you and to think of material things, but we cannot. Therefore, your instructions to perform bhakti to take us out of the material world is not very instructive to us. So Radharani says, because my mind in Vrindavan is one thing. Therefore, it's only me to think of you in my mind, but I say, no, my mind in Vrindavan is the same. So if you put the lotus feet in Vrindavan, this is really meditation. Therefore, when gopis heard the message of Krishna, what did they do? The gopis only became more angry.